भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस पावन अवसर पर, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव। सबसे पहले हम सभी पुजारियों को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आज इतनी सुंदर झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है। कोई बताएगा कि क्या हो रहा है ऑल्टर पर? गौर निताय कुछ दूसरे अवतार में हैं आज। तपोभूमि, तपोवन, तपोवन का दृश्य। इस भूमि को तपोभूमि कहा गया है और प्रभु श्री राम अपने उदाहरण से हम मनुष्यों को सिखा रहे हैं तपो दिव्य, जो कि भागवत में महाराज ऋषभ देव हमें सिखाए कि मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वो दिव्य तप कर भगवत प्राप्ति करे। तो भगवत प्राप्ति बिना दिव्य तप के नहीं मुमकिन। यहां पर रामायण में प्रभु श्री राम ने अपने उदाहरण से तपस्या की पराकाष्ठा दिखाई और ऐसा नहीं कि उनके पास और कोई चारा नहीं था। इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति बाहरी रूप से तपस्वी दिखे या किसी तपस्या की स्थिति में दिखे तो अधिकांश ये देखा जाता है कि और कोई चारा नहीं होता, इसलिए तप का जीवन जीना पड़ता है। परंतु जब सामने सारे विकल्प हो भोग करने के और जब कोई व्यक्ति तपस्या का जीवन चयन करता है तो वो वास्तविक तपस्वी है और वो प्रभु श्री राम ने दिखाया। दशरथ महाराज ने यहां तक प्रस्ताव रख दिया था कि मैं आदेश देता हूं, आक्रमण करो मुझ पर, मुझे हराओ, मुझे मार डालो, मुझे बंदी बनाओ, जो भी करना है। और आक्रमण कर जब तुम मुझ पर जीत जाओगे तो अपने आप राजा बन जाओगे और फिर मेरा ये जो वर है मैंने कैकेयी को जो दिया ये किसी काम का नहीं रहेगा। और आगे चलकर हम रामायण में पढ़ते हैं कि जब भरत अपने ननिहाल से लौटे और कैकेयी ने जो योजना बनाई थी कि मैं अपने भरत को राजा बनाऊंगी, तो भरत ने जब ये सुना तो भरत कैकेयी को मारने पर उतारू हो गया था। तब कैकेयी समझी, उसके होश ठिकाने पर आए कि मैं जिसके लिए ये सारा षड्यंत्र रची हूं, मेरा पुत्र भरत, वही इससे नाखुश है। और जब भरत चित्रकूट जाते हैं प्रभु श्री राम को फिर से अयोध्या लाने के लिए तो भरत के साथ कैकेयी भी जाती है और कैकेयी वहां पर जाकर याचना करती है प्रभु श्री राम कि मैंने, मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ, तो मैं बोल रही हूं, मैं सब कुछ अपना जो भी वचन वर जो भी मैंने मांगा वो सब पीछे ले रही। और ज्यादा समय नहीं हुआ था अब प्रभु श्री राम को चित्रकूट में रहते हुए वनवास का कोई ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो अब देखिए, महाराज दशरथ उनका देहांत हो चुका था, कैकेयी जिसके वजह से यह सब कुछ हुआ वो बोल रही है, भरत बोल रहे हैं, सारी अयोध्या नगरी बोल रही है, परंतु प्रभु श्री राम उनकी धर्मनिष्ठता देखिए। प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, मैंने जो वचन दिया है अपने पिता, उस वचन से मैं पीछे नहीं हट सकता। इसे कहते हैं दिव्य तप, वास्तविक तपस्वी। कल हमने चर्चा की कि प्रभु श्री राम अब माता कौशल्या, अपनी पत्नी सीता, लक्ष्मण, इन्हें समाचार दिए और सीता और लक्ष्मण तैयार हो गए अब, और उन्होंने प्रभु श्री राम को राजी भी कर लिया। और रामचंद्र जी जानते थे, क्योंकि योजना के अनुसार सीता का अपहरण होना है, तो यदि सीता ही नहीं आएगी तो आगे के खंड कैसे बढ़ेंगे आगे। ये नहीं समझना चाहिए कि अब भगवान नाटक कर रहे थे कि सीता को मना करने का, जानते हुए कि सीता को तो आना ही है। नहीं, कल हमने ये सुना कि सीता और लक्ष्मण की शरणागति देखिए, उन्हें अयोध्या के ऐश्वर्य से कोई प्रेम नहीं। लक्ष्मण रामचंद्र जी के भक्त इसलिए नहीं थे क्योंकि रामचंद्र जी राजा बनने वाले थे। माता सीता, उन्होंने रामचंद्र जी से विवाह इसलिए नहीं किया था कि ये सूर्यवंशी, रघुवंश के बड़े राजा होने वाले हैं आगे चलकर, नहीं। और ये कैसे देखने को मिलता है, अब जब 14 वर्ष का वनवास मिलने वाला है तो लक्ष्मण ने कल कह दिया कि मेरे माता पिता आप हैं, मेरे गुरु आप हैं, मेरे जीवन में और कोई नहीं है, न मेरी माता सुमित्रा मेरी माता है, न उर्मिला मेरी पत्नी है, न गुरु वशिष्ठ मेरे गुरु हैं, न दशरथ मेरे पिता हैं। हे प्रभु श्री राम, आप ही सर्वस्व हो मेरे, और जहां पर आप रहोगे बस मुझे वहीं पर रहना है। जैसे कि एक शरीर के साथ उसकी परछाई रहती है। अब यह उदाहरण दिया गया है कि शरीर और शरीर की जो परछाई है उसे कोई अलग कभी नहीं कर सकता, चाहे वो शरीर बीमार अवस्था में हो, चाहे वो शरीर स्वस्थ अवस्था में हो, परछाई हर समय शरीर का साथ देती है। चाहे वो शरीर पर राजसी ठाट बाट हो और चाहे वो शरीर निर्वस्त्र हो, वो परछाई हर समय शरीर के साथ रहती है हर स्थिति में। तो एक भक्त की तुलना उस परछाई से की गई है कि हमारे साधना भक्ति में जब सब कुशल मंगल हमारे अनुसार चलता है तब तो भक्ति करना बहुत आनंदमय लगता है, परंतु जब भगवान इस प्रकार की परीक्षा सामने रखते हैं कि यदि मेरी भक्ति करनी है तो मेरे साथ 14 वर्ष वनवास में आना होगा, और वो वनवास कैसा, साथ में कुछ नहीं। जब ये निकले अपने साथ, तो केवल जो वल्कल धारण किया था अपने शरीर पर बस वही था और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि अब साथ में सब कुछ कपड़े लत्ते और ये सब पैक करो और बिस्तरे इत्यादि, ऐसा कुछ नहीं। इसके विपरीत, जब सीताराम लक्ष्मण वो अब तैयार हुए निकलने के लिए, तो रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी का जो निजी कोष था, जितने सारे जितना सारा धन संपत्ति रामचंद्र जी की थी, उनकी निजी संपत्ति, जिसे आज की भाषा में पॉकेट मनी बोल सकते हो, वो सब कुछ बाहर मंगवाया रामचंद्र जी ने। और वो संपत्ति कितनी थी, एक पर्वत बन गया था स्वर्ण मुद्राओं का, हीरे मोतियों का, वस्त्रों का पर्वत बन गया था। और रामचंद्र जी इन सब को बांटने लगे। ऐसा नहीं कि इनको बुलाए तो बोले अभी इनको सबको पैक करो और सब गाड़ियों में मेरे पीछे पीछे भिजवाना। इन सब को बांटने लगे अयोध्या में। तो वहां पर पासी में एक निर्धन ब्राह्मण रहा करता था, इसका नाम था त्रिजट। ये ब्राह्मण, इसकी पत्नी ने सुना कि रामचंद्र जी सब कुछ अब बांट रहे हैं, नीलामी हो रही है, नीलामी तो नहीं कहेंगे, दान, दान में रामचंद्र जी दे रहे थे सब कुछ। तो त्रिजट की पत्नी ने अपने पति से कहा कि जाओ जाओ कुछ अपने लिए भी ले आओ। तो वो गया ब्राह्मण और सारे अयोध्या वासी पहले से इतनी शोक अवस्था में, और यहां पर अब ये ब्राह्मण आकर भगवान से जो कुछ उनका है वो भी मांगने के लिए आया। तो अयोध्या वासी बोल रहे थे कि इसे क्यों आप बांट रहे हो, रखो इसे, अरे 14 वर्ष के बाद तो आना ही है आपको। ऐसा नहीं कि बस अब हो गया, अब इसके बाद तो कुछ आना नहीं, वहीं से सन्यास होगा और फिर मुक्ति, भगवत धाम। अरे 14 वर्ष के बाद फिर से आना है तो क्यों बांट रहे हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं, मेरे मन में भी किसी भी संपत्ति का विचार भी नहीं आना चाहिए कि मैं किसी संपत्ति का मालिक हूं। 14 वर्ष तक मैं एक मुनि का जीवन, मुनि का व्रत लूंगा। और उसका व्रत क्या है कि मन में भी विचार नहीं आना चाहिए कि मैं किसी संपत्ति का, किसी धन का या किसी प्रांत का मालिक हूं। तो ये त्रिजट ब्राह्मण जब आया तो सभी रो रहे हैं, प्रभु श्री राम अब अपनी सारी संपत्ति बांट रहे हैं। तो रामचंद्र जी इस ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण देखो, तुम्हारे हाथ में ये ब्रह्मदंड है, तो ऐसा करो, इस देखते हैं तुम कितनी दूर तक इस दंडे को फेंक सकते हो, फेंको इस दंडे को, कितनी दूर तक फेंक सकते हो, और जितनी दूर तक ये दंडा तुम्हारा जाएगा उतनी गाय तुम्हारी। इस ब्राह्मण ने अपना दंड लिया और क्योंकि बहुत तेज था इस ब्राह्मण में, शक्ति थी, तो अपने ब्रह्म तेज, अपनी ब्रह्म शक्ति से इसने अपना दंड जब फेंका तो सबके सामने आश्चर्यचकित हो गए सब लोग। सरयू नदी कि पार जाते हुए ये दंड, सैकड़ों गाय को पार करते हुए ये दंड गिरा। तो प्रभु श्री राम हंसने लगे, सभी रो रहे हैं, रामचंद्र जी हंस रहे हैं। रामायण में बताया है कि इस स्थिति में भी प्रभु श्री राम विनोद कर रहे थे, सभी रो रहे हैं, प्रभु श्री राम विनोद कर रहे हैं इस ब्राह्मण के साथ, और तुरंत फिर क्षमा करना कि मैंने विनोद से इस प्रकार से तुम्हें कुछ करने के लिए कहा, और जितनी सारी गाय थी वो सब कुछ दे दी इस ब्राह्मण को। और ये होने के पश्चात अब सीताराम लक्ष्मण ये जाते हैं महाराज दशरथ से विदा लेने के लिए, अंतिम विदा। तो चलते हुए जा रहे हैं, अब पहली दफा पूरी अयोध्या नगरी ने माता सीता को चलते हुए देखा सड़क पर। आज तक सीता माता को किसी ने सड़क पर चलते हुए नहीं देखा था। तो केवल इतना, अब तक तो अयोध्या में ही हैं ये लोग, केवल सड़क पर चलते हुए देखते ही आंसुओं की धारा बहने लगी। और जब भी वो देखते सीता को, राम को, लक्ष्मण को, तो कैकेयी को गाली देते। कितनी गालियां कैकेयी को मिली होगी, सभी कैकेयी को गाली देते और महाराज दशरथ को भी कि ये बीबी का गुलाम। इस प्रकार से महाराज दशरथ को भी गाली दी जाती। तो अब ये जा रहे हैं दशरथ की महल। दशरथ महाराज तो मूर्छित अवस्था में अब तक गिरे पड़े हैं। तो महाराज दशरथ अब जब जान लिए कि अब ये लोग जाने वाले हैं, ये मनहूस घड़ी आ गई, तो महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा कि सुमंत्र ऐसा करो कि मेरी जितनी बड़ी सेना है, जितने अक्षोहिणी सेना है, घोड़े, हाथी और पद सेना, ये सारी सेना साथ में भेजो राम की, सारी सेना जाने दो। 14 वर्ष ये पूरी सेना सीताराम के साथ रहेगी। तो कैकेयी बीच में बोली, तो फिर भरत राजा बनेगा तो उसके लिए कौन सी सेना होगी? और अब कैकेयी कहती है कि हमारे ही वंश में महाराज सगर हुए थे, और महाराज सगर ने उनके पुत्र असमंजस को कैसे बहिष्कार किया था वन में, उस प्रकार से बहिष्कार करो। तो एक मंत्री सिद्धार्थ नाम के, और तुरंत टूट पड़े कैकेयी के ऊपर कि अरे उल्टा स्त्री, समझ में नहीं आता तुम्हें, महाराज सगर ने असमंजस को बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि वो असमंजस वो छोटे छोटे बच्चों को सरयू नदी में ले जाकर डुबो देता, मार देता। वो इतना पाप करता, इसलिए महाराज सगर ने उसे बाहर निकाल दिया था, बहिष्कृत कर दिया था। और तुम असमंजस की तुलना राम से करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तब सुमंत्र जी वो कैकेयी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक गंदा खून आया कहां से, मैं बताता हूं। और फिर वो एक कथा सुनाने लगे कि तुम्हारे जो पिता हैं कैकेयी, महाराज कैकेयी तुम्हारे पिता, इन्हें एक ऋषि ने वरदान दिया था। वरदान ये था कि किसी की भी भाषा को समझ सकते थे, कोई भी भाषा कोई बोले ये समझ लेते, यहां तक कि प्राणियों की भाषा, जानवर चिड़िया ये कोई भी प्राणी भी यदि कुछ बोलते तो ये कैकेयी महाराज समझ लेते। तो ऋषि ने ये वरदान दिया था, परंतु इस वरदान के साथ एक शर्त रखी थी कि भाषा तो समझ लोगे, परंतु यदि उसका रहस्य पता लग गया कि ये दो व्यक्ति क्या बोल रहे हैं किसी एक भाषा में, परंतु यदि किसी तीसरे व्यक्ति को उसका रहस्य बताया तो वहीं पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय से चला आ रहा है कि किसी भी बोनस ऑफर के साथ कंडीशन होता है, तो ये वरदान भी दिया उसके साथ ये कंडीशन लगा दिए। तो अब ये महाराज के कहे एक दिन अपने बाग में बैठे थे और इन्होंने देखा कि दो पक्षी वो वार्ता कर रहे हैं और इनकी पत्नी भी बैठी थी, कैकेयी की मां इनकी पत्नी भी बैठी थी। तो अचानक ये समझ रहे थे अब वो पक्षी क्या बोल रहे हैं, तो पक्षी हो सकता है वो कुछ उन्होंने कोई विनोद में कुछ कह दिया होगा एक दूसरे को पक्षी ने कि क्या आज का दिन है और तुम देखो क्या हो। तो महाराज कैकेयी वो हंसने लगे, ये पक्षी की वार्ता सुनकर हंसने लगे। तो अब अचानक अपनी पत्नी के बगल में बैठकर यदि पति हंसने लग जाए तो पति क्या, पत्नी क्या सोचेगी। जैसे एक बार नारायण वो वैकुंठ में हंसने लगे, लक्ष्मी देवी पैर दबा रही थी तो नारायण हंसने लगे। लक्ष्मी देवी तुरंत पूछ ली कि ये हंसने का कारण क्या है। तो जैसे ही लक्ष्मी देवी ने पूछा तो नारायण समझ गए बताना जरूरी होगा। तो उन्होंने बताया कि मैं देख रहा हूं नीचे ये दो चींटियों को, ये दो चींटियों को मैंने 72 बार इंद्र का पद दिया, इंद्र और शची बनाया, परंतु फिर भी ये आसक्ति इनकी गई नहीं। ये चींटी के योनि में भी देखो कितने आसक्त हैं। तो इसे देखकर नारायण थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो जब ठीक ठीक बता दिया तो फिर मामला शांत हुआ। तो यहां पर अब महाराज कैकेयी वो हंसने लगे तो उन्होंने अब बताए कैसे, क्योंकि शर्त क्या थी कि किसी को बताओगे तो वहीं पर मृत्यु। तो वो सोचने लगे कि यदि मैं बताऊंगा तो तुम्हें रोना होगा क्योंकि फिर तुम विधवा हो जाओगी। तो उन्होंने ऐसी बात को टाल लिया, नहीं ऐसे ही हंसी आई। तो और फिर शंका हुई ऐसे ही कैसे हंसी आई, कुछ तो बात जरूर है, दाल में कुछ तो काला है। तो बार बार बताओ नहीं तो बताओ बताओ। अब ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई कि अब कैसे बताऊं, बताऊं तो मरूंगा, नहीं बताऊं तो मरूंगा किसी दूसरे तरीके से। तो अब जिस ऋषि ने ये वरदान दिया था उन ऋषि के पास गए और ऋषि को जाकर कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, अब मैं हंस दिया, वो पत्नी मेरी बगल में थी, अब वो पूछ रही है, वो हट लगाए हुए है कि बताओ बताओ बताओ। तो ऋषि ने कहा बताओगे तो मरोगे, तो करूं क्या भाई, तुम पति हो तो डांटो पत्नी को, समझाओ, डांट फटकार कर समझाओ। तो फिर थोड़ा साहस लेकर वो गए और महाराज के कहे फिर अपनी पत्नी को कहा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें सब कुछ जानने की, चुप्पी लगाकर बैठो और मैं जो भी बोलता हूं वो करते रहो। तो जब महाराज कैकेयी का ये रूप देखा तो वो समझ गए कि मेरे हित में नहीं है पूछना। तो सुमंत्र जी कैकेयी को बोलते हैं कि तुम्हारी मां से मिला है ये सब कुछ, ये हट करना, परंतु महाराज दशरथ तुम्हारे बाप की तरह नहीं निकले, नहीं तो तुम्हें दो तमाचा लगाकर बिठा देते, ये लो दो वर तुम्हारे। तुम्हारा दशरथ फिर बोलने लगे, महाराज दशरथ कहे कि नहीं, इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं है, दोष मेरा है। और फिर महाराज दशरथ कथा सुनाने लगे कि बहुत समय पहले की बात है, जब वो शिकार के लिए निकले थे और महाराज दशरथ को यह वरदान मिला था, शब्द भेदी बाण चला सकते थे वो। ये कैसा वरदान था कि केवल ध्वनि सुनकर कोई पशु कहां पर है, बाण चलाकर उस पशु का वध कर सकते थे महाराज दशरथ, ये वरदान मिला था। तो महाराज दशरथ जंगल में शिकार के लिए निकले तो उन्होंने ये आवाज सुनी, एक हाथी की आवाज जैसी सुनाई दी उन्हें, और जिस दिशा से वो ध्वनि आ रही थी उस दिशा में बाण चलाया, परंतु वो बाण लगा एक निर्धन वृद्ध अंधे माता पिता के ऋषि पुत्र को, जो कि नदी से पानी ले रहा था अपने माता पिता के लिए, तो उसे बाण लगा और वो फिर चिल्लाने लगा कि किसने, कौन है निर्दयी जिसने मुझ निष्पाप को इस प्रकार से मारा है। तुम्हारा दशरथ अब डर गए तो दौड़ते हुए गए उस दिशा में, देखा कि ये ऋषि पुत्र अब मूर्छित अवस्था में गिरा पड़ा, मरने वाला है। तुम्हारा दशरथ क्षमा याचना मांगने लगे तो इसने कहा कि न केवल मुझे मारा है तुमने, बल्कि मेरे माता पिता को भी, जो कि अंधे हैं और जो प्रतीक्षा में है कि मैं कब आऊंगा जल लेकर, उनको भी मार डाला है तुमने, हमारे पूरे परिवार को मार डाला। तो ऐसे बोलते बोलते फिर उनके प्राण चले गए। अब इस पानी को लेकर महाराज दशरथ गए इस ऋषि पुत्र के माता पिता के पास। तो ये अंधे थे, इन्होंने देखा, आहट सुनी तो इन्हें लगा कि इनके पुत्र आए, तो पुकारने लगे, पुत्र पानी लाए हो क्या? तो महाराज दशरथ अब रोते हुए सारा समाचार सुनाया तो श्राप मिला। श्राप क्या मिला? कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में अब मरने वाला हूं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। तो इससे समझ में आता है ये महाराज कैकेयी को जो वरदान मिला था उसके साथ, उस वरदान के साथ फिर क्या हुआ, और महाराज दशरथ को जो वरदान मिला था, तो इस भौतिक संसार के जो वरदान हैं वो अंततः श्राप में परिणित होते हैं, ये समझ लेना चाहिए। तो इस भौतिक संसार के कोई भी वरदान के पीछे नहीं भागना चाहिए। यदि हम ये समझें कि भाई मुझे ये खिताब हासिल हुआ है, ये सफलता हासिल हुई है, तो वो ये सब वरदान के समान है, अंततः क्या होता है, फिर इस प्रकार से दुखित होना पड़ता है। तो महाराज दशरथ कहे कि ये मेरे ही कर्मों के वजह से आज ये दिन मुझे देखने मिल रहा है। और ये एक भक्त का लक्षण भी है कि जब किसी दुखद स्थिति में कोई भक्त रहता है तो वो और किसी को नहीं कोसता, वो केवल यही देखता है कि मेरा जो पिछला कर्म है, जो बकाया रह गया है, वो कट रहा है और कुछ नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति प्रवचन के बीच में गाली गलौच करने लगा तो प्रभुपाद ने कहा कि पिछले जन्म में शायद मैंने इसे ऐसे कुछ किया होगा, इसलिए ये व्यक्ति इस प्रकार से बिना मतलब। तो यहां पर महाराज दशरथ भी उसी मनोधारणा में सुमंत्र जी को बता रहे हैं। अब महाराज दशरथ सुमंत्र जी को अपने शोक की स्थिति का विवरण देते हैं। बहुत ही सुंदर वाल्मीकि रामायण में इसका विवरण है कि दशरथ महाराज की शोक की स्थिति किस प्रकार की थी। उन्होंने अपने शोक की तुलना एक समुद्र से की है, शोक समुद्र। तुम्हारा दशरथ कहे कि ये जो शोक के समुद्र में गिरा हुआ हूं, ये किस प्रकार का समुद्र है? ये जो शोक के वजह से मेरी सांसें भर रही हैं, बहुत गहरी और भरी हुई सांसें महाराज दशरथ ले रहे थे। तो कहते हैं कि समुद्र में जो गहरी लहरें दिखती हैं वो इस शोक समुद्र की जो मेरी भारी सांसें हैं उसके समान है, या जो मेरी भारी सांसें हैं इस शोक समुद्र की गहरी और भारी लहरों के समान है। फिर वो कहते हैं कि एक समुद्र जो है वो नदियों के जल से भरता है, तो ये जो शोक का समुद्र है ये कौन सी नदियों के जल से भर रहा है? कौशल्या और सुमित्रा के आंसुओं की नदियों के जल से। इनके आंखों से जो आंसुओं की नदी निकल रही है उन दो नदियों से ये शोक का समुद्र भरा हुआ है। और इस समुद्र में जो सारी मछलियां हैं वो अयोध्या वासी हैं सारे, ये सारे अयोध्या वासी इस समुद्र की मछलियां हैं, परंतु ये सारी मछलियां तड़प रही हैं, देखो, क्योंकि इस समुद्र के नीचे लावा निकला है। अक्सर समुद्र के नीचे भी लावा निकलता है। तुम्हारा दशरथ कहते हैं कि ये जो समुद्र है शोक का समुद्र, इसके नीचे लावा निकला है और इस लावा के वजह से ये सारी मछलियां जो हैं झुलस रही हैं, जल रही हैं, तड़प रही हैं, और वो लावा है इस कैकेयी की ईर्ष्या, वो इस समुद्र के नीचे का लावा है। और ये मंथरा इस समुद्र में उस मगरमच्छ के समान है, नीचे से लावा और ऊपर से ये मगरमच्छ इन मछलियों को खा रहा है, तो ये मंथरा उस मगरमच्छ के समान है। और मैं कौन हूं? मैं भी एक अयोध्या वासी हूं जो जल रहा हूं इस समुद्र में और डूब रहा हूं, और ये मंथरा जो मगरमच्छ के समान है इस कैकेयी और मंथरा के षड्यंत्र में खाया जा रहा हूं। तो ये महाराज दशरथ की स्थिति थी। इसलिए जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं तो महाराज दशरथ के प्रति सहानुभूति हमारी होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि महाराज दशरथ पर क्या गुजर रहे, क्या बीत रही होगी कि पूरी अयोध्या नगरी, महाराज दशरथ जो कि उनके राजा, महाराज दशरथ को कलंकित बोल रही है, महाराज दशरथ के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, गाली गलौच। कैकेयी से ज्यादा दशरथ महाराज को, तो ये उनकी स्थिति। और उस समय कैकेयी ने कहा ये बहुत हो गया भाषण ये दशरथ महाराज का, अब जल्दी करो इनको निकालो अब बाहर। ये देखो कैकेयी कितनी निर्दयी हो गई थी। तो प्रभु श्री राम ने सुबह सुबह दातुन कर निकले थे, कुछ खाया भी नहीं, नहाया भी नहीं। कैकेयी ने कहा ऐसे ही बिना खाए बिना नहाए जाना होगा। तुरंत वलकल धारण करो, और वो खुद लेकर आई वलकल, खुद लेकर आई, खुद सारी तैयारियां की, इसे पहनो। तो पूरी अयोध्या नगरी अब आंसुओं की नदियों में, आंसुओं की नदियां बह रही हैं, जब प्रभु श्री राम अब ये वलकल धारण कर रहे हैं। और ये बहुत कड़ा और कठोर होता है ये वलकल, वृक्ष की छाल। तो माता सीता, उन्हें तो पता भी नहीं कि ये वलकल को कैसे पहनते हैं। तो माता सीता का जो इतना मृदु शरीर, उसे स्पर्श करने से ही चोट पहुंचने लगी, वहां पर रक्त का संचार हुआ और लाल हो गया उनका शरीर केवल स्पर्श करने से। तो माता सीता को वो ठीक से पहन नहीं पा रही थी, तो प्रभु श्री राम ने सहायता की, और कैकेयी के अलावा वहां पर सभी रुदन के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। अब महाराज दशरथ ने सुमंत्र को बुलाया और कहा कि सुमंत्र देखो, तुम अपना रथ लो, अपना रथ लो, और रथ में इनको ले जाओ, और दो तीन दिन वन में भ्रमण कराकर ले आना। वन में जाने की बात है, दो तीन दिन भ्रमण कराकर ले आना। तो फिर राम ने मेरा वचन भी निभाया, वन में गए वो, और फिर सारी दुनिया मुझे गाली देने दो, वैसी गाली दे रही है, देने दो गाली, दो तीन दिन घुमाकर ले आना। सुमंत्र को यह आदेश महाराज दशरथ ने दिया। तब तक तो सीताराम लक्ष्मण निकल चुके थे, अब पैदल निकल चुके वो, और पैदल निकल चुके, और उनके साथ अब पूरी अयोध्या नगरी पीछे पीछे। तो सुमंत्र जी रथ लेकर पहुंचे और कहे कि महाराज दशरथ का आदेश है कि आपको मैं रथ में ले चलो। तो दशरथ का आदेश, तो फिर सीताराम लक्ष्मण बैठे रथ पर, परंतु उन्होंने जब देखा कि अयोध्या, पूरी अयोध्या नगरी जा रही है पीछे पीछे, तो सोचे कि ये कहां तक जाएंगे ये लोग, और इन्हें कौन रोकेगा। तो वो भागते हुए, अब रथ को तेजी से चलाने के लिए कहा, तो ये भागने लगे, तो प्रभु श्री राम ने देखा कि ये रथ के वजह से ये लोग पसीने पसीने और इतने थके हुए, तो कहा कि रथ रोको, मैं नीचे उतरता हूं। तो इनकी दशा को देखते हुए प्रभु श्री राम नीचे उतरे और चलना शुरू किए, और कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा, सभी चल रहे हैं, चल रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं कहां चल रहे हैं। जहां जहां राम जा रहे हैं, पीछे पीछे पूरी अयोध्या नगरी जा रही। कोई राम को नहीं पूछ रहा कि आप कहां जा रहे हो, और राम इनको नहीं पूछ पा रहे कि आप क्यों आ रहे हो। बस तब तक तमसा नदी के तट तक पहुंचे। तमसा नदी के तट तक पहुंचे तो प्रभु श्री राम ने अब सोचा कि यहां पर मुझे कुछ योजना करनी होगी कि ये सारे वापस जाएं। तो शाम का समय हो चुका था, सभी थके हुए थे, कुछ खाए भी नहीं थे, तो सभी थके हुए भगवान की योग माया शक्ति से सभी को निद्रा आ गई और सभी वहां पर सो गए। जब सब सो गए तो भगवान ने भी सोने का नाटक किया, और फिर मध्य रात्रि में उठ गए जब ये सब सो रहे गाढ़ निद्रा में अब हैं, मध्य रात्रि में प्रभु श्री राम उठ गए और सुमंत्र जी को उठाया और कहा कि रथ तैयार करो, हमें निकलना है। परंतु रथ इस प्रकार से चलाना, प्रभु श्री राम जानते थे कि ये लोग जब सुबह उठेंगे तो रथ के पहिए का निशान कहां कहां गया है ये पता लगा लेंगे और वहां पे फिर मुझे ढूंढ लेंगे। तो सुमंत्र जी को कहा कि इस प्रकार से रथ चलाना कि ये भ्रमित हो जाए कि रथ कहां गया, कुछ समझ में नहीं आए, इस प्रकार से रथ चलाना। तो तेजी से कभी अयोध्या की ओर, कभी वन की ओर, इस प्रकार से वो जो चक्के के जो निशान थे, रथ के पहिए के जो निशान थे, वो इस प्रकार से भ्रमित तरीके से जमीन पर प्रस्तुत कर दिए सुमंत्र जी ने। अब जब सुबह ये सारे अयोध्यावासी उठे तो देखे राम तो चले गए, रथ नहीं है, सुमंत्र जी नहीं है, सीता लक्ष्मण नहीं है। तो उन्होंने सोचा शायद प्रभु की यही इच्छा है कि हम इसी दुख के सागर में हमारे प्राण त्यागे। तो वो फिर से लौट गए अयोध्या नगरी और अयोध्या नगरी का विवरण दिया गया है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अयोध्या नगरी में गाय दूध देना बंद कर दी, बछड़ों को दूध देना बंद कर दी, और दूध भी देती तो बछड़े दूध पीना बंद कर दिए। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कि एक बड़ा समुद्र जो कि सूख गया है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के तट पर हो और पानी नहीं समुद्र में, इस प्रकार से अयोध्या नगरी दिख रही थी, सूखे हुए समुद्र के समान। अयोध्या नगरी के ऊपर जो तारे थे वो टिमटिमाना बंद कर दिए, मानो वो जो तारे अयोध्या नगरी के ऊपर वो भी अब एकटक होकर रो रहे हैं। केवल पूरी अयोध्या नगरी में मानो समय बंद हो गया था, समय का कोई भान किसी को नहीं था, क्या समय हो रहा है, क्या कुछ करना है, किसी को कोई भान नहीं था। स्मशान भूमि की तरह अयोध्या नगरी हो चुकी थी। यहां पर राम अब निकले तो वो जिस किसी प्रांत से गुजरते और जो भी वहां उस प्रांत के निवासी राम लक्ष्मण सीता को देखते वहां तक खबर फैल चुकी थी। तो केवल कैकेयी को और दशरथ को गाली देते। तो प्रभु श्री राम एक एक इन गांव वालों को जाकर इनको मना करते कि नहीं ऐसा शब्द आप मत कहो कैकेयी, मेरी मां के बारे में। तो जब वो ये कहते कि मेरी मां के बारे में ऐसा मत कहो तो सब शांत हो जाते। अब देखिए और कोई होता तो सबसे पहले ये ढिंडोरा पीटता सब जाके, देखो ये मेरे साथ क्या किया, मेरे साथ देखो कैसा बुरा वर्ताव इन्होंने किया है। परंतु प्रभु श्री राम जाकर एक एक को मना करते, चुप करते, और कई तो जानते भी नहीं थे, रामचंद्र जी को भी नहीं जानते थे, क्या हुआ इनके साथ कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि अब काफी अंदर तक आ गए थे ये लोग। तो कई रामचंद्र जी की सुंदरता को देखते हुए इतने आश्चर्यचकित हो जाते कि वो आपस में चर्चा करते तो राजकुमार जैसे दिखते हैं, ये वन में क्या कर रहे हैं। एक गांव में कुछ ज्योतिषी थे तो इन्होंने प्रभु श्री राम के चरण चिन्ह देखे, वहां से जस्ट गुजरे ही थे प्रभु श्री राम, तो उनके चरण चिन्ह देखे तो राज चिन्ह दिखे। तो कहे अरे ये तो कोई चक्रवर्ती सम्राट के चिन्ह है, ये नहीं कि ये नहीं, वो जान रहे थे कि अरे चक्रवर्ती सम्राट नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड के सम्राट हैं। तो वो एक दूसरे में चर्चा करते, पूरे गांव में कहती कि अरे ऐसे चिन्ह हमने किसी के नहीं देखे। और वो भी चरणों के चिन्ह, हाथ के नहीं, केवल चरणों के चिन्ह। कोई भी ज्योतिषी चरणों के चिन्ह नहीं देखता, हाथ के चिन्ह देखता है। परंतु प्रभु श्री राम के चरणों के चिन्ह देखते हुए ये भविष्य बोल रहे थे उनका। एक गांव में उन्होंने जब राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता को देखा तो पूरा गांव आया और उनको बिठाकर पूछने लगा कि आप लोग हो कौन, और ये वन में इस प्रकार से विचरण क्यों कर रहे हो। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हम 14 वर्ष के लिए वन में रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मेरी मां कैकेयी ने, मेरे पिता ने निकाल दिया है बाहर, और ऐसे निर्दयी माता पिता किसी के नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बस इतना कहा कि हमने निश्चय किया है कि हम 14 वर्ष वन में रहेंगे। तो ये गांव वालों ने पूछा कि वन में करोगे क्या। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि जो कुछ मिल जाए उस पर निर्वाह करेंगे। तो इस गांव ने कहा कि देखो, हमारे गांव में 360 परिवार हैं, तो एक एक दिन एक एक परिवार आपको घर पर बुलाएगा प्रसाद के लिए। तो आप यहां पर रहो, ये वन के समान ही है, हमारा गांव जंगल में है, और आपको यहां वहां घूमना भी नहीं पड़ेगा। तो जब, और हम क्योंकि निर्धन हैं, तो कोई एक परिवार तो आपको पूरे साल भर नहीं खिला पाएगा, इतना तो धन हमारे पास नहीं। ये देखो कितने सादे लोग थे ये। तो ये कहे कि एक एक परिवार आपको बुलाएगा और आप केवल 3 लोग हो, और आप तो वैसे भी ज्यादा नहीं खाने वाले, आपने कहा। तो इतना कुछ खर्चा भी नहीं होगा, केवल इनकी सुंदरता को देखते हुए ये इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने प्रस्ताव रखा कि हर रोज एक परिवार के घर। प्रभु श्री राम ने कहा नहीं, मैंने जो प्रण लिया है वन में, एक मुनि का व्रत लिया है, उसे मुझे पालन करना है। तो वहां से अब आगे निकले, अब तक सुमंत्र जी हैं साथ में, वहां से आगे निकले तो श्रृंगवेरपुर नाम के एक प्रांत पर पहुंचे जो गंगा के तट पर था। तो वहां पर जब पहुंचे तो इस श्रृंगवेरपुर का जो राजा था वो एक निषाद था, गुह जिसका नाम निषाद राज। तो ये निषाद राज प्रभु श्री राम को अच्छी भली भांति जानता, इनका भक्त था ये। तो इसे जब समाचार मिला कि ये यहां पर आए हैं, तो ये दौड़ते हुए अपने अपने पूरी प्रजा को ले गया और स्वागत किया इनका। और जब इसे पता लगा कि 14 वर्ष के लिए ये अब बाहर निकले हैं और ये एक मुनि का जीवन जीने वाले हैं, एक तपस्वी का जीवन जीने वाले हैं, तो ये निषाद राज गुह ने सबसे पहले बड़े बड़े अच्छे पकवान, 56 भोग और ये इत्यादि सब लेकर आए, और ऐशो आराम के साधन सब लेकर आए और प्रभु श्री राम के सामने रखा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, मैंने मुनि का व्रत लिया है, मुनि का वेश धारण किया है, इसलिए मैं मुनि का आहार लूंगा, केवल कंद मूल खाने वाला हूं मैं, कोई पकी वस्तु नहीं खाने वाला, कंद मूल। हमें तो पता भी नहीं होगा कंद मूल होता क्या है, हमारी स्थिति ये है। कितनों ने कंद मूल खाया है जीवन में, कितनों ने देखा है कंद मूल, कितने जानते तक नहीं, पहली बार आज सुने हैं। तो यहां पर महाराज गुह, ये निषाद राज, ये सब कुछ लेकर आए। अब देखिए, जब सामने कुछ होता नहीं तो उसे त्यागना बहुत आसान होता है ना? विशेष रूप से जब प्रसाद सामने आ जाए, या अब यदि मंदिर में खिचड़ी पकी है आज और कोई स्वीट राइस नहीं या कोई पनीर सब्जी या ऐसा कुछ नहीं, तो उस दिन इतना ज्यादा कुछ गम नहीं होता कि ये नहीं मिला। परंतु यदि सामने सब कुछ है और खिचड़ी भी है या कंदमूल, कल्पना कीजिए आज के रामनवमी का फीस्ट शाम का, एक टेबल पर जो जानकीनाथ प्रभु पूरा फीस्ट बना रहे हैं, वो सब कुछ रहेगा, 8-10 आइटम रहेंगे और उसके बगल में कंदमूल, तो हम में से कितने होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं केवल कंदमूल देना मुझे। कंदमूल भी खाएंगे, किसके साथ? पूरी फीस्ट के साथ होने के बाद कंदमूल खाएंगे। जैसे अनंत निताय प्रभु यहां पर आए करते थे, तो एक बार अनंत निताय प्रभु बता रहे थे कि उनको एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था किसी बेस में। तो अनंत निताय प्रभु चैतन्य चरितामृत से बहुत चर्चा करते हैं, तो उन्होंने उस कार्यक्रम में रघुनाथ दास गोस्वामी की तपस्या की लेक्चर दिया कि रघुनाथ दास गोस्वामी केवल 3 बूंद छास, वो भी 1-2 दिन छोड़ कर लेते थे, 2-3 बूंद छास लेते थे केवल और कुछ नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य को सुनाने के पश्चात फिर जब प्रसाद का टाइम आया तो बड़ा फीस्ट तैयार किया हुआ था, तो देखा कि एक के बाद एक आइटम आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। तो अब इतना सब सामने फीस्ट है और सभी बोले आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, प्रवचन खाइए ना, फीस्ट खाइए ना। और ये सब कुछ होने के पश्चात फिर लास्ट में छास लाई गई, तो फिर अंत में कम से कम कुछ तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पद चुनाव पे हमने पालन किया कि छास अंत में तो पिए। तो यहां पर जब निषाद राज ने सब कुछ सामने लाया तो प्रभु श्री राम ने क्या किया कि ये इतना बड़ा फीस्ट वो सुमंत्र जी के घोड़ों को खिलाए। देखिए, ये सारा फीस्ट घोड़ों को खिलाए और वो, और ऐसा नहीं कि माता सीता और लक्ष्मण ने प्रतिरोध किया कि भाई आप खाओ कंदमूल, हम तो ये खाते हैं, वो भी उनके साथ केवल उन्होंने कंदमूल लिया और ये पूरा फीस्ट घोड़ों को खिलाया गया। देखिए, प्रभु श्री राम के संपर्क में यदि घोड़े भी आ जाएं तो उनको भी फीस्ट मिलता है। और उसके पश्चात फिर निषाद राज ने कहा कि अच्छा अब ठीक है, आप लोग थके हुए हो, इतना आप लोग चले हो, तो मैं एक कक्ष आपके लिए तैयार करता हूं जहां पर आप सो। नहीं, वहां एक अशोक का वृक्ष था, इसी के नीचे मैं सोने वाला हूं। तो सूखे पत्ते उस वृक्ष के, उस पत्तों पर प्रभु श्री राम सो गए। जब ये दृश्य निषाद राज ने देखा तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि निषाद अब विषाद में चले गए, निषाद राज हो गए विषाद राज, ऐसे रोने लगे बिलखने लगे और कैकेयी को गाली पे गाली, गाली पे गाली, कोई गिनती नहीं कैकेयी को कितनी गाली मिली होगी। अब जब सुबह हुई भोर हुई, अब प्रभु श्री राम ने सुमंत्र जी को बुलाया। अब तक सुमंत्र जी साथ में हैं, तो सुमंत्र जी को बुलाया और सुमंत्र जी जान गए कि अब ये क्या बोलने वाले हैं, मेरा भी समय आ गया। तो प्रभु श्री राम कुछ कहें उससे पहले सुमंत्र जी ने कह दिया कि आपके पिता महाराज दशरथ ने यह आदेश दिया था कि 2-3 दिन आपको घुमाकर मैं फिर से ले चलूं अयोध्या, तो हो गया अब चलिए। अच्छा, इसमें जब एक बात मैं भूल गया बोलना कि जब निषाद राज ने ये सारे पकवान लाकर सामने रखे तो देखिए प्रभु श्री राम किसके विषय में सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि यदि इस सब का भोग मैं करूंगा तो माता कैकेयी को दुख लगेगा, तो माता कैकेयी को दुख नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैं केवल कंदमूल खाऊंगा, क्योंकि माता कैकेयी का यह आदेश था कि मैं इस प्रकार का जीवन 14 वर्ष जीऊं। तो उस समय भी वो माता कैकेयी के सुख के विषय में, उनके आनंद के विषय में सोच रहे कि वो वहां पर 56 भोग खा रही होगी और यहां पर इनको मिला है, परंतु ये उसके दुख के विषय में सोच रहे हैं। तो अब सुमंत्र जी को प्रभु श्री राम कहते हैं कि देखो सुमंत्र, तुम ये नहीं जानते कि वैराग्य और त्याग का आनंद क्या है। ये मत समझो कि मैं यहां पर बहुत दुखी हूं या अब 14 वर्ष के लिए मैं बहुत दुखी होने वाला हूं। वो बोल रहे हैं कि इसमें एक बहुत विशेष आनंद होता है वैराग्य में, और ये जो वैराग्य का नशा है ये केवल कुछ ही लोग चख सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। और सुमंत्र जी को फिर उदाहरण देने लगे, महाराज शिबी का उदाहरण दिए सबसे पहले कि महाराज शिबी, एक दिन की बात है कि एक बाज पक्षी और एक कबूतर, तो बाज पक्षी कबूतर के पीछे खाने के लिए उड़ रहा था, तो कबूतर और ये बाज पक्षी दोनों महाराज शिबी के समक्ष आए, तो कबूतर ने सबसे पहले महाराज शिबी की शरण ली और कबूतर ने महाराज शिबी को कहा कि ये बाज पक्षी मुझे खाने वाला है, मैं आपकी प्रजा हूं, मुझे बचाइए। तो महाराज शिबी ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, तुमने मेरी शरण ली है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें बचाऊं। तो अब ये बाज पक्षी ये महाराज शिबी से कहता है कि महाराज देखिए प्रकृति के अनुसार ये मेरा भोजन है और आज मेरे कर्मों अनुसार मुझे ये कबूतर भोजन के रूप में मिला है, तो आप बीच में मत आइए, मुझे ये कबूतर को खाने दीजिए। तो महाराज शिबी इस बाज से कहते हैं कि देखो बाज आप जानते हैं ना पक्षी, बड़ा वो, तो महाराज शिबी इस बाज पक्षी से कहते हैं कि देखो तुम्हें भूख लगी है ना, तो मैं तुम्हें दूसरा भोजन खिलाता हूं, इससे कई गुना ज्यादा भोजन खिलाता हूं। तो बाज पक्षी कहता है नहीं मुझे यही खाना है और कुछ नहीं, जैसे छोटे बच्चे कहे मुझे ये आइसक्रीम ही खाना है और यही खाना है इसी दुकान से। तो बाज पक्षी कहा कि मुझे यही कबूतर को खाना है। तो महाराज शिबी ने कहा कि देखो तुम्हें मांस खाना है ना, तुम्हें दूसरे पक्षी का मांस, कबूतर का मांस खिला दूंगा। तो अब ये बाज महाराज शिबी से कहता है कि इतने बड़े दानवीर बनते हो तो दूसरे पक्षी को क्यों मारते हो, खुद का मांस दो तब जानू। अब देखिए महाराज शिबी पूरी पृथ्वी के राजा और एक पक्षी इस प्रकार के वाक्य इन राजा को बोल रहा है, तो और कोई राजा होता तो तुम्हारी ये मजा आ गई, अरे अब तुमको पका के मैं खिलाऊंगा लोगों को। परंतु महाराज शिबी उन्होंने वचन दे दिया दोनों को, कबूतर की रक्षा भी होगी और वचन इस बाज को भी दे दिया कि तुम्हें तुम्हारा पेट भी मैं भरूंगा। तो फिर ये बाज ने इस प्रकार से ललकारा कि अपना मांस खिलाओ। फिर तराजू लाया गया, तराजू में एक और इस कबूतर को रखा गया और महाराज शिबी अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काट के तराजू के दूसरे पलड़े में रखने गए। तो अपने घुटने के नीचे का मांस काटना शुरू किया उन्होंने। तो कबूतर कितना बड़ा होता है, इतना सा कबूतर उतना मांस काट कर रखा, कबूतर फिर भी भारी, और निकाल कर रखा कबूतर फिर भी भारी, उसका दुगना तीन गुना चार गुना कितना गुना रखा वो कबूतर फिर भी भारी था। अंततः महाराज शिबी बैठ गए खुद पूरा, तब जाकर वो मेल हुआ उनके वजन का, अर्थात पूरा शरीर अब देना होगा इन्हें। तो महाराज शिबी तैयार हुए अपना पूरा शरीर देने के लिए, किसे, एक बाज के लिए। और हालांकि ये दोनों इंद्र और अग्निदेव थे, ये कबूतर और ये बाज पक्षी इंद्र और अग्निदेव, तो ये तुरंत प्रकट हुए और इन्होंने महाराज शिबी से कहा कि आप की दानवीरता दानशूरता का गुणगान हम कहां कहां तक नहीं सुन रहे थे, तो हमारे अंदर ये शंका हो रही थी, तो हम देखना चाहते थे, इसलिए हमने आपकी परीक्षा इस प्रकार से ली। तो यहां पर प्रभु श्री राम ये उदाहरण दे रहे हैं महाराज शिबी का कि देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाराज शिबी का उदाहरण दे रहे हैं सुमंत्र जी को कि महाराज शिबी ने अरे किसका वचन रखा, एक पक्षी का, तो क्या मैं अपने पिता का वचन नहीं रख सकता। ददीची मुनि का उदाहरण दिया कि ददीची मुनि ने अपनी हड्डियां दे दी देवताओं की रक्षा करने के लिए, और ददीची मुनि के हड्डियों से, देखिए ये देवता गए ददीची मुनि के पास और ददीची मुनि का पहले बहुत गुणगान किया और ददीची मुनि ने पूछा कि मांगो क्या चाहिए, देखिए ये क्या मांगते, आपकी हड्डियां, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि ददीची मुनि की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उसी से वृत्रासुर का वध होगा। तब देखिए यदि हमारे पास कोई आए, हमारा गुणगान करे, उसके पश्चात हम पूछे कि भाई क्या चाहिए, जन्माष्टमी का डोनेशन चाहिए, वो कहे नहीं नहीं आपकी हड्डियां चाहिए। तो ददीची मुनि इनका उदाहरण दे रहे हैं कि ददीची मुनि ने अपनी हड्डियां दे दी और ददीची मुनि का उदाहरण महाराज बलि ने भी दिया था, जब शुक्राचार्य रोक रहे थे महाराज बलि को कि नहीं 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 तू मुकर जाओ कुछ मत दो वामन देव को, तो उन्होंने ददीची ऋषि का उदाहरण दिया। और यहां पर बलि महाराज का उदाहरण रामचंद्र जी भी दे रहे हैं सुमंत्र जी को कि अरे महाराज बलि ददीची मुनि रंती देव, महाराज रंती देव ने भी अपना सब कुछ चांडालों को कुत्तों को शूद्र को इन सब को सब कुछ दे दिया, तो मैं क्यों नहीं अपना सब कुछ दे दूं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यहां पर प्रभु श्री राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमें दे रहे हैं, वो ये है कि भगवान जब अवतरित होते हैं, जैसे आज उनका आविर्भाव दिवस है, भगवान हमें सिखाते हैं वैराग्य और त्याग के द्वारा, भोग के द्वारा नहीं। भगवान की कोई भी लीला से हम शिक्षा लेते हैं, उनके त्याग और वैराग्य की लीला जो है उससे सबसे ज्यादा। भगवान भोग तो अपने आध्यात्मिक संसार में करते ही हैं, परंतु इस भौतिक संसार में आते हैं भोग कर 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 कुछ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि त्याग कर 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 सिखाने के लिए। क्यों? क्यों भगवान इस भौतिक संसार में आकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए, यहां तक कि भगवान कृष्ण, उन्होंने भी सब कुछ त्यागा और उस प्रकार से सिखाया हमें। ब्रजभूमि को त्यागे, गोपियों को त्यागे, ब्रजवासियों को त्यागे, नंद यशोदा को त्यागे, रामचंद्र जी ने वनवास लिया, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो ये सब अवतार आते हैं, ये क्यों वैराग्य और त्याग को दिखाते हैं? क्योंकि इस भौतिक संसार में हमारी स्वाभाविक भोग की प्रवृत्ति है, तो यदि वो आकर उनकी भोग की लीला करेंगे तो हम क्या सुधरेंगे? अरे पहले से बिगड़े हुए इसलिए यहां पर फेंके गए हैं हम लोग, और यदि भगवान भी आकर केवल अपनी भोग की लीलाएं यहां पर करते रहेंगे तो फिर हम, तो आप भी करते रहो, हम भी हमारी रास लीला करेंगे। हमारी तो पहले से ही चल रही थी, आप आए बीच में, परंतु भगवान त्याग कर 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 हमें सिखाते हैं कि इस भौतिक संसार में यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, तपो दिव्यम, इस प्रकार का तप, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर यस्तम अहम प्रपद्ये। सर्वभौम भट्टाचार्य ने यह गुणगान किया चैतन्य महाप्रभु का, कि आप कौन सी विद्या सिखाने आए हो? वैराग्य की विद्या। परंतु वो वैराग्य कौन, उसकी विद्या क्या है? निज भक्ति योग। यहां पर सीता और लक्ष्मण वो भी वैराग्य को अपनाए, ऐसा नहीं था कि उन्हें वन में जाने का कोई भूत सवार हुआ था। उन्हें वन से कोई मतलब नहीं, उन्हें अयोध्या से कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है केवल राम से। तो चाहे ऐश्वर्य मिले या फिर वन का जीवन मिले, राम है तो सब कुछ है। और जैसे कि कल हमने चर्चा की, माता सीता ने कहा, आप यदि साथ में हो तो वलकल भी रेशमी साड़ी के समान है, घास का आसन भी इंद्र के आसन के समान है, आप यदि साथ में हो, आप यदि साथ में नहीं तो अयोध्या भी नरक के समान। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने एक शिक्षा में कहा, गोवर्धन पर्वत के विषय में, वो कहते हैं कि यदि गोवर्धन पर मैं भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखता तो वो गोवर्धन केवल एक विषैला सर्प के समान दिखता है मुझे, और कुछ नहीं मेरे लिए वो। अर्थात ये समझना चाहिए कि जब तक वैराग्य भगवान से नहीं जुड़ता तब तक उस वैराग्य का कोई महत्व नहीं है। अनासक्तस्य विषयान यथारहम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे। जब तक वो कृष्ण से संबंधित नहीं होता तब तक उस वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए, किसी भी धर्म को आप लीजिए, क्रिश्चियन धर्म को लीजिए, वहां पर भी जीसस क्राइस्ट की पूजा क्यों इतनी होती है? क्योंकि उन्होंने वैराग्य दिखाया। और कैसा वैराग्य? कि उन्हें, उन्हीं के लोगों ने कील से चिन दिया जीते जी, उनके शरीर पर कीलें धंस दी और उन्हें इस प्रकार से मारा, और उन्होंने मरते समय सबके लिए क्या प्रार्थना की कि मैं आप सबके पाप अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूं, आप शरण आओ मेरे। हम अमृतसर में थे तो वहां पर जो स्वर्ण मंदिर है, हालांकि ये जो सिख धर्म है, ये हमारे जो सनातन धर्म हिंदू धर्म से कोई अलग नहीं है, वही है। जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उस मंदिर का वहां का नाम, हालांकि बाहर से स्वर्ण लगाया है इसलिए लोग उसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, परंतु वो मंदिर है क्या? वो मंदिर का नाम है हरमंदिर, हरमंदिर साहिब बोलते हैं उसे। हरमंदिर का अर्थ है हरि का मंदिर। जैसे वो वहां पर जाओ तो सभी आपको कहेंगे, जैसे हम हरे कृष्णा मंदिर में सबको क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, तो वहां पर सबको क्या कहते हैं, वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दी खालसा। अब ये वाहे गुरु है क्या? व ह र ग और र, तो इन अक्षरों से बना है। तो व है विष्णु, है हरि, ग गोविंद, र राम। ये उनके ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि ये है वाहे गुरु। और उनके उनके जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में साफ साफ उनके जो गुरु गुरु गोविंद सिंह, ये सब लिखते हैं कि केवल एक ही नाम है जप करने लायक, वो है श्री गोविंद का नाम। तो वहां उस समय के एक राजा हुए जिनका नाम था राजा दीप सिंह। इनके विषय में वहां पर इनका एक चित्र भी वहां पर था, तो इनकी कथा सुनाई गई कि मुगलों से युद्ध कर रहे थे, मुगलों को हरा रहे थे, मार रहे थे। मुगल जब वहां पर आक्रमण किए स्वर्ण मंदिर पर, तो ये मुगलों को वहां से भगा रहे थे, और इन्होंने प्रण लिया था कि ये मरेंगे तो हरमंदिर में जाकर मरेंगे, अपना माथा हरमंदिर पर टेकेंगे, हरि के मंदिर पर, वो स्वर्ण मंदिर में जाकर टेकेंगे। तो युद्ध में हुआ क्या, लड़ते लड़ते इनका सर काट दिया गया, पूरा सर अलग हो गया, धड़ से अलग हो गया। तो अब देखिए, इन्होंने ये जो प्रण लिया था, तो अब तो जीने की कोई आशा नहीं, सर अलग हो गया है। तो जब इनका सर अलग हुआ, तो सर गिरने से पहले, धरती पर गिरने से पहले, इन्होंने अपने हाथ से उस सर को पकड़ लिया, और ये चित्र भी है। उन्होंने अपने हाथ से उस सर को पकड़ लिया और एक हाथ में तलवार ली, अब तक मरे नहीं वो, और एक हाथ में सर लिए और एक हाथ में तलवार लिए, वो 6 किलोमीटर चले। किस दिशा में? हरमंदिर की दिशा में। सोचिए, वो चलते हुए अपने सर को अपने हाथ में लेते हुए चलते हुए चलते हुए, और जब 1 किलोमीटर दूरी पर, हर मंदिर की दूरी पर, वो वहां पर अब गिर गए, आगे नहीं चल पाए, वो पूरा क्षीण हो गया, सारी शक्ति क्षीण हो गई। उस समय उन्होंने इतनी शक्ति उनके अंदर, उन्होंने फिर अपना जो सर है वहां से फेंका, और वो सर वो घूमते हुए वो हर मंदिर साहिब में वहां गिरा जाकर। और जो उन्होंने प्रण लिया था कि मैं मरने से पहले मेरा सर वहां पर टेक कर मरूंगा, तो वो प्रण पूरा हुआ। तो अब देखिए, ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं त्याग के हर एक धर्म में। तो यही प्रभु श्री राम स्थापित करने के लिए अवतरित हुए कि मैं धर्म की स्थापना करता हूं वैराग्य और त्याग को अपनाकर। और वास्तविक रूप में इस भौतिक संसार में वैराग्य और त्याग में जो आनंद है वो किसी भोग में आनंद नहीं। ये प्रभु श्री राम सुमंत्र जी से बोल रहे हैं। एक भौतिक उदाहरण को यदि हम लें, हम जब खाते हैं तो उसमें आनंद मिलता है, परंतु उसे त्यागना भी पड़ता है। तो यह कहा गया है कि जब तक ठीक से त्यागेंगे नहीं तो खा भी ठीक से नहीं पाएंगे। और अक्सर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा कब रहता है? जब वो जो कुछ भोगा है उसे ठीक से त्यागे। तो यदि इस उदाहरण को हम लें तो इस उदाहरण में यह देखा जा रहा है कि जो त्याग और वैराग्य है वो हमारे आत्मा के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और केवल भोग भोग वो तो फिर सारे दोषों को पैदा करता है और केवल उसमें फिर बीमारी ये सब कुछ ही है। इसलिए इस भौतिक संसार में अंततः प्रकृति तो हम सब कुछ छीन लेने वाली है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा ही। तो प्रभु श्री राम सुना रहे हैं कि ये जो अयोध्या का राज्य है या कहीं का भी राज्य है, ये एक ना एक दिन तो मुझे छोड़ना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बोल रहे थे कि ये जो आजकल के राजनेता हैं, गद्दी को कुर्सी को पकड़े हुए हैं, मरते दम तक छोड़ेंगे नहीं इस कुर्सी को। प्रभुपाद एक हिंदी प्रवचन में बोल रहे थे कि इन्हें जब तक गोली से नहीं उड़ा दिया जाता तब तक कुर्सी नहीं छोड़ते ये आजकल के नेता। और ऐसा देखा गया है कि ये जितने सारे हमारे नेता हुए हैं इनको गोलियों से उड़ाया गया है। जैसे कि एक व्यक्ति हमें बता रहे थे कि हमारा जो भारत है, भारत की प्रगति किस दिशा में जा रही है, कि महात्मा गांधी को केवल एक पिस्तौल से मारा गया और इंदिरा गांधी को राइफल से मारा गया, तो थोड़ा प्रगति हुई भारत की। और राजीव गांधी को फिर बम से मारा गया। बोले ये हमारी भारत की प्रगति है कि नेताओं को मारने में प्रगति पे आए हैं हम लोग। यहां पर प्रभु श्री राम जो कि सब कुछ करने में सक्षम, परंतु वो अपने सामने ये उदाहरण रख रहे हैं वैराग्य का और त्याग का। और आज के दिन विशेष रूप से हमें यही सीखना चाहिए कि अंततः मुझे सबसे विरक्ति लेनी है। जैसे कि लक्ष्मण का उदाहरण, कि लक्ष्मण के सामने कोई जबरदस्ती नहीं थी जाने की। हालांकि रामचंद्र जी का उदाहरण भी लें तो कोई कह सकता है कि ठीक है अपने पिता को जो वचन दिया या पिता के वचन को पूरा करने के लिए, परंतु लक्ष्मण का उदाहरण देखें तो कोई उन पर पाबंदी नहीं थी। सीता का भी बोल सकते हैं कि भाई सीता का विवाह हुआ तो सीता को तो जाना था, लक्ष्मण पर कोई पाबंदी नहीं थी। परंतु उन्होंने अपने उदाहरण से दिखाया कि मेरे जीवन में एक ही आनंद है, वो है राम का सानिध्य, उनकी सेवा, सानिध्य नहीं उनकी सेवा। और लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक सेवा में ही लगे रहे। ऐसी सेवा उन्होंने यहां नासिक में जब पर्णकुटी बनाई उन्होंने सीताराम के लिए, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे बिल्कुल भी वियोग नहीं कि मैंने अपने पिता को खो दिया है, तुम मेरी ऐसी सेवा कर रहे हो जैसे एक पिता पुत्र की सेवा करता है। सोचिए 14 वर्ष तक एक मिनट भी सोए नहीं लक्ष्मण 14 वर्ष तक। हमें एक दो घंटे में तकलीफ हो जाती है, वो भी रामनवमी के दिन। तो लक्ष्मण इनका वैराग्य देखिए कि सब कुछ सामने है उनकी। अभी अभी शादी हुई है, नई नई उनकी पत्नी है, अयोध्या नगरी में वो सुख से रह सकते थे, सब कुछ था, नहीं, परंतु चुनाव किया वैराग्य का, त्याग का। तो इन सब से हमें यही सीखना है आज के दिन कि प्रार्थना करनी है सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से कि आपने जो उदाहरण स्थापित किया है, हम भी अपने जीवन में कम से कम जो मेरी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे तो मैं त्यागूं, जो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है कम से कम उसे तो त्याग सकते हैं, वहां से शुरुआत करें। और हम व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से जो जो आसक्तियों को बनाए रखे हैं, जो पनप रही हैं हमारे अंदर, उन सब को धीरे धीरे कम करें। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद यदि हमें मिले तो हम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए इस प्रकार से हम धर्मनिष्ठ हों और नियमों का पालन करें कि हम उन्हें प्रसन्न करते हुए आज हमारा जीवन सफल बनाएं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसके आगे बहुत ही सुंदर कथा है कि सुमंत्र जी को तो भेज दिया, सुमंत्र जी को भेजने के पश्चात अब प्रभु श्री राम गंगा को पार करना है उन्हें, तो वहां पर केवट की कथा आती है, इसकी चर्चा हम आज शाम को करेंगे। केवल जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि सुमंत्र जी जाते जाते उनकी दशा क्या थी। सुमंत्र जी अब प्रभु श्री राम को छोड़ रहे हैं तो सुमंत्र जी गिर गए रामचंद्र जी के चरणों में, रोने लगे। उन्होंने कहा कि मैं किस मुंह से जाऊं, मैं अकेला आपके साथ यहां पर इतनी दूर तक रहा, पूरी अयोध्या नगरी प्रतीक्षा में है, मैं कब वापस आऊंगा, और सभी जब देखेंगे ये रथ खाली, महाराज दशरथ जब देखेंगे तो मैं क्या मुंह से उनके सामने जाऊंगा, वो मुझे मार डालेंगे, तो इससे अच्छा मैं यहीं पे मर जाऊं। तो भगवान कहते नहीं, तुम्हें जाना है किसके लिए, कैकेयी के लिए। अब तक भगवान कैकेयी का कुशल मंगल सोच रहे हैं, कैकेयी के लिए जाना है, क्योंकि यदि तुम नहीं आओगे तो कैकेयी दुखी हो जाएगी, कि कैकेयी को लगेगा कि सुमंत्र नहीं आए तो सारी सुख सुविधा सुमंत्र प्रदान कर रहा है, तो तुम जाओ ताकि कैकेयी फिर तसल्ली कर ले कि जो कैकेयी की इच्छा थी वो पूरा हो रही। इतना सुनने के पश्चात सुमंत्र जी उनका कंठ भर आया और वो कुछ शब्द नहीं निकाल पाए, तो अपने रथ की तरफ गए, रथ को शुरू करने चाहा उन्होंने, रथ चलाना चाहा, रथ आगे नहीं जा रहा था क्योंकि घोड़े रो रहे थे। और वो घोड़े, उनके आंसू इतने थे कि उन्हें आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सुमंत्र जी भगवान के पास गए, मैं क्या करूं, ये घोड़े भी जाने के लिए तैयार नहीं, ये घोड़े भी रो रहे हैं। तो यहां पर प्रभु श्री राम का वैराग्य देखिए, प्रभु श्री राम ने अपने हृदय को इतना कठोर बनाया कि बिना पीछे मुड़े न तो उन्होंने घोड़ों की तरफ देखा न सुमंत्र की तरफ देखा, निकल पड़े। इसे कहते हैं वैराग्य। और ये प्रभु श्री राम ने अपने उदाहरण से हमें सिखाया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।